तो सर्वज्ञ को क्यों नहीं गुरु बनाया जाए, अल्पज्ञ को या अज्ञ को क्यों गुरु बनाया जाए? और वो भी भगवान का सखा क्यों भगवान को छोड़ करके दूसरे को गुरु बनाएगा? भगवान जिसके लिए सुलभ है वो क्यों नहीं भगवान को गुरु बनाएगा? पानी पिए छान के गुरु कर जान के, बहुत सोच समझ करके गुरु करना चाहिए, नहीं किसी अंधे के पीछे चल। अंधा जथाम भय नहीं है बात। आजकल लोग ये जानते हैं कि गुरु बनाना चाहिए, पर किसको बनाना चाहिए, गुरु में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इस बात पर विचार नहीं करते। कान फुकवाना, कान फुकवाना हो गया, उससे तो ऐसे कान फूकने वाले से तो कान से खोट निकालने वाला वैद्य अच्छा है, कम से कम कान की सफाई करता है। कान फुकवाना, कान नहीं फूका जाता, वास्तव में कान में मंत्र दिया जाता है। परंतु अब इतना स्टैंडर्ड बढ़ गया लोगों का ज्ञान कि अब सचमुच में कुछ लोग फह फह फूक देते हैं, इतने हीन ज्ञान वाले हो गए। मंत्र स्वयं भी याद नहीं है तो शिष्य को क्या देंगे? इस संसार की यही दशा है कि जीव तो अज्ञ है ही, उनका गुरु उससे भी ज्यादा अज्ञ बन जाता है। कैसे सत्यव्रत महाराज कहते हैं, अचक्षुरंधस्य जथा ग्रणीकृत, अंधे का गुरु अचक्षु हो जाता है। अंधा उसे कहते हैं कि जन्म हुआ और उसकी आंख थोड़ी थोड़ी काम कर रही, आंख है लेकिन उसका गुरु वो बनता है जिसको जन्म से ही आंख नहीं, अचक्षु। आजकल कुछ लोग हैं वे सिखाते हैं दूसरों को कि नहीं नहीं मूर्ति पूजा मत करो, ये राम कृष्ण आए गए सब अब नहीं है, गुरु ही सब कुछ है। ऐसे लोग बिल्कुल अचक्षु हैं, बिना आंख वाले। और जिनमें श्रद्धा है भगवान कृष्ण के प्रति, राम के प्रति, विष्णु के प्रति, उनकी श्रद्धा भी चौपट कर दे, गुरु बने। एक नंबर के बोका, एक नंबर के अज्ञ और दूसरे के गुरु बने हुए, अजीब समाज आ गया, तमाशा होने लगा। पहले ऐसे लोग नहीं थे उद्धव जी के समय में, वास्तव में वे लोग कुछ कुछ जानते थे लेकिन सर्वज्ञ नहीं थे। तो उद्धव जी सर्वज्ञ को अपने गुरु बना रहे। अच्छा ठीक है, कोई अनवद्य भी हो सार हो है, अनंत पार भी सर्वज्ञ भी नहीं, भगवान में ये तो गुण है ही। इसके साथ ही साथ भगवान में यह गुण है कि वे सर्वसमर्थ है, ईश्वर। यहाँ सामर्थ्य का क्या अर्थ है? शिष्य की या श्रोता की जो रक्षा कर ले, रक्षा करने समर्थ हो, उसको ईश्वर कहे। लेकिन कोई भी वक्ता या गुरु किसी शिष्य को बचा नहीं सकते हैं काल से, जमराज से, कर्म बंधन से, लेकिन भगवान ईश्वर है, समर्थ है, अपनी शरण में आए हुए का वे पालन करने में समर्थ है। सर्व धर्मान परित्यज्य मा मे कम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं समस्त धर्मों को छोड़कर मेरी शरण लो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें सब प्रकार के पाप से बचाऊंगा। इस तरह से समर्थ है। सब 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 स्थान पर, मान लीजिए पूरे विश्व के लोग एक दिन में कृष्ण भक्त हो जाएं, तो प्रश्न होगा भगवान रक्षा करेंगे? करेंगे, सब जगह है, सब समर्थ है, जिसको ईश्वर कहते। लेकिन दूसरा वक्ता या गुरु क्या करेगा? कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि कोई आदमी अपनी पत्नी को एक दो बच्चे को लेकर के गुरु के पास आता है, कहता है गुरु जी अब हम आपकी शरण में, अब गुरु जी क्या करेंगे? उसकी स्त्री और बच्चे का खर्चा चलाएंगे? हम आपकी शरण में, तो वो गुरु कहता रहे हम तुम्हारी शरण में है, हमारा देखो कि अब हम तुम्हारा क्या देखेंगे, तुम ही लोग हमारे यहाँ थलम हो। शिष्यों की कृपा पर गुरु जी रहा, गुरु क्या करेगा? ये दशा है संसार में, क्या कोई किसी की रक्षा करेगा? भगवान ईश्वर है, सर्व समर्थ है, रक्षा करने में पूर्ण समर्थ। और पांचवी विशेषता बता रहे हैं अकुंठ विकुंठ भीष्म। विकुंठ भीष्म, भीष्म का अर्थ होता है स्थान, वास स्थान, और विकुंठ का अर्थ है कभी भी कुंठित नहीं होने वाला, जहाँ कुंठा नहीं, चिंता नहीं, विनाश नहीं है, सब सुख भरा हुआ है, ऐसा जिसका स्थान। और वो है अकुंठ विकुंठ भीष्म, वह विकुंठ वैकुंठ धाम अकुंठ है, काल के द्वारा नष्ट नहीं होता या वहाँ कोई कमी नहीं है। तो भगवान का पोजीशन ऐसा है, उनका धाम ऐसा है कि वहां से कभी गिरते नहीं, वास स्थान सुदृढ़ है, अनंत कोटि जीव भगवान के धाम में रह सकते हैं, सबका भरण पोषण हो सकता है, सारी सुख की सामग्रियां। लेकिन इस संसार में जो वक्ताओं का, देवताओं का या गुरुओं का जो पोजीशन है, वो कब किधर हो जाएगा कोई ठीक नहीं, स्थान भ्रष्ट होना ही पड़ता है, स्थान से भ्रष्ट हो जाते हैं, लोक छीन लिया जाता है, पोस्ट छीन लिया जाता है, और बोलना भी बंद करा दिया जाता है कभी कभी, अब प्रवचन नहीं कर सकते। वक्ता है लेकिन उसका पोजीशन पद चला जाता है, दूसरे लोग ना छीने लेकिन रोग से विषय के आवेश से उसमें भी च्यूत हो जाता है, स्थान भ्रष्ट हो जाता है। तो जिसका अपना ही वास स्थान भ्रष्ट हो जाए, रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं है, स्थिति का कुछ ठिकाना नहीं है, दूसरे की क्या रक्षा करेगा। तो भगवान का जो वैकुंठ धाम है वो अकुंठ है, सुरक्षित है, वहां कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। और बाकी जितने वास स्थान है वहां सब प्रकार का प्रॉब्लम, कभी भी कोई प्रॉब्लम खड़ा हो जाए। देवता जितने हैं स्वर्ग लोक में, सब एक दिन वास स्थान छोड़ते हैं, छीड़े कुंडी मर्त लोकम विशंति, सबको पोस्ट छोड़ना पड़ता है। और ये दिल्ली और पटना में तो देख ही रहे कितना टेम्पोररी पद है, किसी तरह से वोट लड़ करके पहुंचे भी तो मध्यावधि चुनाव करना पड़ता है, और अब कोई पता नहीं है कि कौन उस पद को पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा भी तो कितना दिन रहेगा कोई ठीक नहीं, तो दूसरे को क्या स्थायी पद देगा। जब अपने स्थान कहीं कोई ठोर ठिकाना नहीं है तो दूसरे को क्या सिक्योर स्थान देगा, जन्म मरण से पार करेगा, सुखी करेगा, ऐसा कैसे कर सकते। तो भगवान की ये पांच विशेषता उद्धव जी बता रहे हैं जो अन्य किसी में नहीं है, अनवाद्य, अनंत पार, सर्वाज्ञ, ईश्वर और अकुंठ विकुंठ भीष्म, पांच विशेषता। ऐसा ही व्यक्ति वास्तव में गुरु हो सकता है, वक्ता हो सकता है। ऊ का अर्थ होता है हे, इसमें ऊ शब्द आया है निर्वीण धीह अहम ऊ और ह, ऊ का अर्थ है हे, ए ए भगवान, ऊ हे भगवान, ह मैंने स्पष्ट या बिल्कुल स्पष्ट है, हे भगवान नारायणम नरसखम भवंतम ब्रजना भी तप्त निर्वीण थी अहम शरणम तपस्ते, आप नरसख हैं, नारायण सखाय नरसखम, यह भी भगवान की छठी विशेषता है। मैं आपकी शरण ले रहा हूं क्योंकि आप नरसख हैं, नरसखा है, नर मतलब जीव, जीव के सहज सुहृद हैं और सहज संघाती भी, सहज साथ देने वाले, सब समय रहते हैं जीव के साथ, नर के सखा है और नारायण समस्त जीवों के आश्रय है। नार का अर्थ होता है नर का समूह, नर माने जीव, जीव के समूह को नार कहते हैं, और नार का जो आयन है, आश्रय है, उसको नारायण कहते हैं। हे नाथ, आप ही समस्त जीवों को पालते हैं, पोषते हैं, इसके साथ ही सबको ज्ञान देते हैं, वेद शास्त्र बनाए हैं, तो समस्त जीवों के आप आश्रय हैं, अतः मैं भी एक जीव हूं तो मेरे आश्रय भी आप हैं। जो केवल आश्रय ही नहीं है, स्वाभाविक ही समस्त जीवों के हितकारी हैं आप, स सहज सखा है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य के कोई न कोई हेल्पर है, सहायक है। जैसे गृहस्थों के स्त्री सहायक है, मित्र है, बच्चा मित्र है, या और गुरु जी सहायता करते हैं, कुछ मिनिस्टर लोग सहायता करते हैं। यहाँ से जनता चुन करके भेजती है कि जनता सखा, ये जनता के सखा है, और जनता के विषय में सोचेंगे कुछ करेंगे, तब तक जनता का पैसा ही ले लेकर के स्व सखा हो जाते हैं, जो अपने विषय में सोचते हैं। और जनता बाद में गाली देती, इतना पैसा खा ले रहे किया, क्या सब किया। तो वास्तव में संसार में कोई किसी का मित्र हो ही नहीं सकता है, संभव नहीं। सब एक दूसरे को खाने वाले हैं। अब विश्वास कीजिए, ऐसे कहने पर तो दुख लगेगा, लेकिन परिवार में जो लोग हैं वे लोग भी अपने अपने स्वार्थ के कारण संग में हैं, और जिस दिन स्वार्थ टकराता है तो बांट ले बस। भाई भाई है, लेकिन जिस दिन स्वार्थ टकराएगा वह तो बांट ले। यहाँ तक कि बाप और बेटा में भी बंटवारा हो जाता है, और पति और पत्नी भी दो गांड में हो जाते, दो रास्ते पर लोहा ले लेते। कोई किसी की सहायता करने के लिए नहीं है, अपना स्वार्थ अपना अर्थ है, जिससे कि वो परिवार में टिका हुआ है। अगर परिवार को छोड़ने से अपना स्वार्थ सधेगा, यहाँ तक कि काट देने से सधेगा, तो काटने में भी उसको कोई देख नहीं। ये जीवों की दशा है। कोई जीव एक दूसरे का हितकारी नहीं है। जो वैष्णव हो जाता है उन पर एक नियम लागू नहीं होता है, हेतु रहित जग जुग उपकार तुम तुम्हार सेवक असुरार। तो बाकी लोग अपने स्वार्थ में, और सच्चा निस्वार्थ मित्र हमारा कौन है जीवों का, वो है भगवान। इसलिए उनको नर सखा कहते हैं, जीव के सहज सखा। ये सूरज बनाए हैं, पृथ्वी बनाए हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सबके हृदय में भी स्मृति देते हैं, कभी संग नहीं छोड़ते। तो जब हमें अपना सहायक ही चुनना है तो क्यों नहीं हम भगवान को चुने। बहुत भाग्यशाली वे लोग हैं जो ये पहचान लिए कृष्ण हमारे रक्षक हैं, कृष्ण हमारे सुहृद हैं, सुहृदम सर्वभूता है। और जो वक्ता हैं और जो गुरु हैं वो शिष्यों का हित करने के लिए ही गुरु बनते हैं या वक्ता बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप विद्यालय में, विश्वविद्यालय में देखिए, जो वक्ता हैं, टीचर हैं, वो अपना मेंटेनेंस करने के लिए वो बने हुए हैं उस पद पर। वो पढ़ा नहीं रहे, कमा रहे हैं। और आज के युग में तो और अधिक स्पष्ट देखा जा सकता है कि उसी छात्र को, जो छात्र उनके कक्षा में पढ़ता है, उसी को प्राइवेट समय में वे ट्यूशन पढ़ाते हैं, और ट्यूशन में बहुत कड़ी फीस लेते हैं अपने ही शिष्य से। पहले के गुरु लोग नहीं लेते थे, केवल भोजन के लिए शनिचर लेते थे ना, कुछ अनाज ले लेते थे, संतुष्ट हो जाते थे, पढ़ाते थे, निस्वार्थ पढ़ाई करते थे। और अब तो टीचर को पहले वेतन चाहिए। तो गुरु आई क्या कर रहा है, वो तो कमा रहा है। आए गुरु आई नहीं, कमाई कर रहा है। ये दशा हो गई, दिन पर दिन संसार में हालत बिगड़ती जा रही है। और स्कूल में कम पढ़ाते हैं, ट्यूशन में कुछ अधिक पढ़ाते हैं। तो सरकार तो पैसा देती ही है, अब छात्रों से भी पैसा ऐंठते हैं, और कहे जाते हैं गुरु जी, टीचर जी, वो फटीचर है, ठग है। वास्तव पढ़ाने के लिए सरकार नियुक्त की और अपना कमाई करने लगे। अरे अपने शिष्यों से क्या पैसा लेना है भाई, सरकार मान दे रही है। तो अगर बच्चों को पढ़ाना है तो उसको तो चाहिए 24 घंटा पढ़ा रहे, ऐसा हम लोगों ने शिक्षक देखा है। प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षक हम लोग गांव में रहते थे, बच्चों को रात में पढ़ाते थे, भोर में पढ़ाते थे, और कुछ भी नहीं देते, केवल भोजन करते थे, बाकी कोई फीस नहीं। लेकिन अब शिक्षकों को पैसा चाहिए इस तरह। तो स्वार्थ रहित सखा कोई नहीं है जीव का। जब अपने शिष्यों का है ही नहीं तो दूसरे का क्या होगा। ये तो देखी हुई बात है ना, कलयुग में बिल्कुल क्लियर हो गया सब। भगवान वास्तव में सबके स्वार्थहीन सखा है, उनको किसी चीज की कमी नहीं है, वे किसी शिष्य से या जीव से कुछ चाहेंगे नहीं और सब तरह से तत्पर है जीवों को ज्ञान देने के लिए। ऐसा भी नहीं कि भगवान अपने घर के काम धंधा में फंसे हुए हैं और उपदेश नहीं करेंगे। वे सबके साथ एक एक जीव के साथ में परमात्मा के रूप में है, अंतर्जामी के रूप में है। यही भगवान का मित्रत्व है जीवों के साथ, यही उनकी मित्रता है, साथ नहीं छोड़ते हैं, ज्ञान देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ऐसे नर सखम नारायणम भवंतम अहम शरणम प्रपद्ये, ऐसे सहज सुहृद सर्वज्ञ अपास्त समस्त दोष सर्वज्ञ ईश्वर की मैं शरण ले रहा हूँ ज्ञान प्राप्ति के लिए। आपकी शरण में क्यों दूसरे को गुरु बना, दूसरे हतभाग्य लोगों का गुरु दूसरे लोग बना करे, मैं दूसरे को गुरु नहीं बनता, हमारे गुरु आप हैं, आप हमें सिखाए। इस प्रकार उद्धव जी आत्मसमर्पण किए भगवान के चरण में, तो भगवान यहां से उपदेश प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, श्री भगवान उवाच, प्रायेण मनुजा लोके लोकतत्व विचक्षणः समुद्धरन्ति आत्मानम् आत्मनैवाशुभाषया, आत्मनो गुरुरात्मैव कोशस्य विशेषतः, यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् श्रेयोषावनुविन्दते। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, प्रायेण प्राय मनुजः मनुष्य का लोके संसार में लोक तत्व विचक्षण, लोक तत्व को भली भांति समझने वाले, समुद्धरंती सम्यक उद्धार कर लेते हैं, ही निश्चित आत्मान अपना आत्मना अपने से एवं ही अशुभाशया अशुभ वासनाओं से। आत्मनः अपना गुरु हितकारी, आत्मा आत्मा एवं हे, कोई भी व्यक्ति स्वयं ही अपने गुरु है। पुरुषस्य
बार उद्धव जी ने यह कहा कि मैं निर्वीण हूँ और दुखों से तप्त हूँ और आपकी शरण ले रहा हूँ, मैं आपको गुरु बना रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपने से अपना गुरु है। यदि वास्तव में कोई अपना उद्धार करना चाहे तो वह व्यक्ति ही कर पाएगा, दूसरा उसका उद्धार नहीं कर पाएगा। भगवान अद्भुत बात बोल रहे हैं, लेकिन यह बिल्कुल ठीक। ऐसे भगवान का उत्तरदायित्व है जीव के उद्धार का, या गुरु पर उत्तरदायित्व है, लेकिन सबसे पहला उत्तरदायित्व उस व्यक्ति का। अतः प्राय शब्द का अर्थ होता है बहुलांश में, और प्राय शब्द का अर्थ होता है अल्पांश में। तो यहाँ अल्पांश में प्रयोग कर रहे हैं भगवान। इस तरह के लोग बिरले हैं इस जगत में, जो अपने से अपना उद्धार कर रहे हैं। ऐसा देखा गया है, लोक तत्व विचक्षणा लोक तत्वस्य विचक्षणा परीक्षका, लोक तत्वस्य जनजाथार्थ्यस्य, लोक के भद्र और अभद्र के कारण पर विचार करने में तो प्रवीण है वे लोग। तो प्राय मनुष्य अपने से अपना उद्धार कर लेते हैं। आत्मना एवं मतलब गुरु उपदेशम देना थी अशुभाशया विषय वासना तह आत्मान समुद्धरम। और भगवान एक बात कह रहे हैं कि मनुष्यों की तो बात है ही, दूसरे जीव भी अपना हितैषी स्वयं ही है, विशेष करके पुरुष मनुष्य। आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः। तो जो भगवान सभी जीवों को उत्पन्न किए हैं, वो जीवों का जो कर्तव्य है विशेषकर मनुष्य का, उसके तरफ संकेत कर रहे हैं कि अपने से अपना उद्धार करना चाहिए। गीता में भी भगवान ने कहा है, जैसे वह श्लोक उद्धरेत उद्धरेत आत्मनात्मान नात्मानम औषादे आत्मनो गुरुरात्मैव। हाँ, आत्मनो बंधुरात्मैव। जैसे पशु कहीं घूमते हैं, पक्षी घूमते हैं, कीट पतंग घूमते हैं, तो वास्तव में अपना हित में अपने आप करते हैं। देखते हैं कि यह काम करने से मेरा हित होगा, मुझको संकट आ गया है, तो एक पक्षी भी बचना चाहता है, एक पशु भी बच करके चलता है। हम लोग शहरों में देखे हैं बड़े जोर से कारें चलती हैं, ट्रेन चलती है, लेकिन पशु भी जानते हैं कि हमको इस दूरी तक चलना है, नहीं तो धक्का लग जाए। कुत्ते चलते हैं, बड़ी समझदारी से चलते हैं। वहां क्या गुरु करेगा, यह परमात्मा ही हृदय में है तो क्या कर रहा है। जीव का वास्तविक हित हित करने में वह जीव ही समर्थ है ना। ये कुत्ता भी अपने को बचा कर चलता है, अपना हित करता है। जाड़ा लगता है तो अपने शरीर को ढकना या कुछ भी व्यवस्था करना मनुष्य ऐसा करता है। जैसे पशु पक्षी भी अपना हित अपने आप करते हैं, तो मनुष्य क्यों नहीं कर सकता है। इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि किसी को गुरु की आवश्यकता नहीं है। गुरु की आवश्यकता है, गुरु का जो कार्य है गुरु करेगा, लेकिन जो व्यक्ति की जिम्मेवारी है उसके तरफ भगवान ने संकेत कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मंगला आरती का समय हो, तो शिष्य अगर नहीं उठेगा, स्वयं अपना उद्धार नहीं करेगा, तो गुरु कहाँ कहाँ उठा के चलेगा। तो ऐसा देखा गया, गुरु उठा दिए इस रूम से तो जाकर के शिष्य दूसरे रूम में सो। तो अपने आप अपना उद्धार नहीं करेगा तो गुरु जी ठेर ढाल कर क्या करेंगे। बैल को उसी बैल को उठाया जाता है जो उठने के बाद चले, घूमे फिरे, काम करे। जो फलूस जाता है उसको उठाया भी नहीं जाता है ना। तो वास्तव में भगवान जो कुछ कह रहे हैं, जीव की जो अपनी जिम्मेदारी है वह निभा। उद्धव भी कह रहे हैं कि आप गुरु हैं, आप ऐसे हैं, वे हैं, तो भगवान कहते हैं कि उद्धव मनुष्य अपने से अपना उद्धार करते हैं। ऐसा देखा गया है कुछ लोगों के विषय में। किससे उद्धार? अशुभाशय, जो हृदय में बहुत सी कामनाएं हैं, राग द्वेष आदि है, इससे भी अपना उद्धार करते हैं। मेरा नाम जप करके करें, जैसे भी करें वे करते हैं। और ये भी कहने के लिए कोई कह देता है कि गुरु जी उद्धार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन नाम जप कौन करता है? शिष्य नाम जप कर रहा है तो वह नाम जप उसका उद्धार करेगा, भगवान की भक्ति उद्धार करेगी। तो शिष्य के लिए तो दूसरा कोई करेगा नहीं, गुरु तो करेगा नहीं, करना है उसी को। तो इस तरह से सिद्ध हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने से ही अपना उद्धार करता है। और इसी संदर्भ में भगवान ने बहुत सुंदर इतिहास वर्णन किया है जिसकी कथा कल से चालू होगी। एक ऐसे भगवान के अवतार हुए भगवान दत्तात्रेय जो अपने आप सीखते, 24 गुरु की कथा है, किसी गुरु ने इनको उपदेश नहीं दिया था, बिना उपदेश के स्वयं ही उनसे शिक्षा ले ली, सीख ली। महाराज जदू से वर्णन करते हैं, भगवान उस इतिहास को प्रस्तुत करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसे मान लीजिए कोई बीमार हो गया है तो वैद्य की जो जिम्मेवारी है वो तो है, या स्वजनों की जो जिम्मेवारी है वो है कि भाई दवाई में पैसा लगाएंगे, वैद्य जी दवा देंगे, लेकिन स्वस्थ होने के लिए कुछ पथ्य है और भी नियम है, वह तो रोगी को करना पड़ेगा ना। तो स्वयं ठीक होना चाहेगा तब और लोग हेल्प करेंगे, और नहीं वो रोग बतावे ही ना, रोग से मुक्त होना ही न चाहे, प्रयास ही न करे, तो दवा और वैद्य क्या करेंगे। भगवान बोल रहे हैं सबके लिए, प्रायण मनुजो राज प्रायण मनुजा लोक के लोक तत्व विचक्षणा समुद्धरं आत्मान आत्म नैव सुभाष। और अपने से अपना उद्धार व्यक्ति कर सकता है क्योंकि वही अपने को सबसे ज्यादा जानता है। ये गुरु अभी जानते नहीं है किसी को पूरा पूरा वास्तव, लेकिन अपने हृदय में क्या है, कितनी गंदगी है, कितनी कामनाएं हैं, क्या कमजोरी हो, वह व्यक्ति जानता है। मैं अपने विषय में जानता हूं, पूरा नहीं जानता लेकिन और लोगों से ज्यादा जानता हूं कि हमारे हृदय में क्या क्या कामना उठती है, क्या तरंग है, क्या कमी है, ये मुझे मालूम है। सबको अपना अपना मालूम, अपनी अपनी कमी सबको मालूम है, तो वह उस कमी को सुधारने का पहले तो अभिलाषा करे, इच्छा करे, और इच्छा के बाद प्रयास करे। इस तरह से जिज्ञासु बनना चाहिए, अपना उद्धार करना चाहिए। बहुत लोगों ने किया है उद्धार अपने से गुरु के उपदेश के बिना, और नहीं तो गुरु के हजार हजार उपदेश के बाद भी नहीं उद्धार होगा, ये नहीं की नहीं करेगा। भगवान दत्तात्रेय पूजा करके 24 गुरु शिक्षा दिए थे, कबूतर और कबूतरी उनको गीता पढ़ाए थे, लेकिन उसको देख करके सीख लिए। हम लोग भी देखते हैं किसी को मरते हुए तो क्या हम लोग डरते हैं, डर लगता है कि हाय रे हम भी मर जाएंगे? नहीं, बल्कि कहते हैं यात्रा बढ़ गया। हमारे उल्लास देखते हैं तो कहते हैं यात्रा ठीक बढ़, यात्रा ठीक हो गई। कोई ये अनुभव नहीं होता है कि अरे एक दिन हमें भी लोग उठा करके इसी तरह से चलेंगे और दूसरे की यात्रा बने। देखते हैं, सोचते रहे। कृष्णदत्त भरद्वाज एक बहुत बड़े लेखक हो गए हैं, वो लिखे हैं कि मैं एक बार सोचा कि हो इन विषय विराट भवन बसत था चौक पर, बनारस में रहते रहते बैराग नहीं हो रहा है, अब मणिकर्णिका घाट पर चलना चाहिए देखने के लिए, तो शायद बैराग हो जाए। तो वो लिखे है कि मैं मणिकर्णिका घाट पर जाने लगा, देखा 10-20 मूर्ति आ रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ लोग जलाकर स्नान करके जा रहे हैं, कुछ मूर्तों के बारे में मुर्दा मुंशी और उनका मालिक कुछ विचार कर रहे हैं अधिक पैसा लेने के लिए, और जो वकील लोग हैं लोग कम करा रहे हैं। तो इस तरह से मैं देखा, पहले दिन तो मुझे बड़ा भयावह लगा कि पैदा हो जाएगा, और बाद में जब रोज रोज जाए कृष्ण दत्त भरद्वाज एक बहुत बड़े लेखक हो गए हैं, वो लिखे हैं कि मैं एक बार सोचा कि हो न विषय विराग भवन बसत मैं चौथ बना, बनारस में रहते रहते वैराग नहीं हो रहा है, अब मणिकर्णिका घाट पर चलना चाहिए देखने तो शायद वैराग हो जाए। तो वो लिखे है कि मैं मणिकर्णिका घाट पर जाने लगा, देखा 10-20 लोग तैयार रहे हैं चल रहे हैं, कुछ लोग जलाकर स्नान करके जा रहे हैं, कुछ मूर्तों के बारे में बोलता मुंशी और उनका मार्गी कुछ विचार कर रहे हैं अधिक पैसा लेने के लिए, और जो वकील लोग हैं वो कम करा रहे हैं। तो इस तरह से मैं देखा, पहले दिन तो मुझे बड़ा भयावह लगा, लगा कि पैदा हो जाएगा, और बाद में जब रोज रोज जाने लगा तो ध्यान ही नहीं रहता था कि ये मणिकर्णिका घाट है, और वहाँ जो मुर्दा भूंजते हैं जलाते हैं वो लोग इस समय 50 के का मुर्दा लेते हैं। मुझे पूछा जाता है कि आप लोग ये क्या करते हैं पैसे का, तो इसमें आधा तो शराब पी जाते हैं, बिना शराब पिए कैसे जलाएंगे। तो उनको कोई वैराग्य नहीं है कि एक दिन हमें भी इसी तरह से जलना है। तो वैसे आदमियों को गीता भागवत की कथा सुनाकर क्या कर सकते हैं, स्वयं अपने रोज मरते हुए देख रहे हैं जला रहे हैं और फिर भी वैराग्य नहीं है, फिर भी अपने पुत्र परिवार के लिए मुर्दा भूंज भूंज करके और पैसा कमा रहे हैं, क्या वैराग्य। जो भाग्यवान होते हैं इसलिए विगल सकते हैं लगाए प्रायण का अर्थ है, कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो अपने से अपना उद्धार कर लेते हैं अशुभ वासना से, इसलिए अपना उद्धार करना चाहिए। आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः, विशेषकर मनुष्य शरीर में जीव है अपने से अपना गुरु है। भगवान यह नहीं कह रहे कि आज से गुरु बनाना आदि छोड़ दिया जाए और अपने से ही सब अपने गुरु है, सोए मनमाना घूमे और गुरु हो जाए। यहाँ गुरु का अर्थ है कि अपना हित करना चाहे तो कर सकता है और चाहते ही है सब अपना हित। जैसे मैं पहले उदाहरण दे, पशु भी अपना हित करता है, जानता है कि ये चीज नहीं खाना चाहिए ये चीज खाना चाहिए। कुछ ऐसे पशु है उनको अगर विष दिया जाए तो नहीं खाएंगे, गंध से पहचान लेते हैं कि खाने लायक वस्तु नहीं, तो अपना निजहित अनहित पशु पहचान मानुष तन गुरु ज्ञान निधान, तो अपना हित अहित पशु भी जान जाते। तो क्या हम लोगों को नहीं जानना चाहिए कि हमारा हित क्या है अहित क्या है। अब इसी तरह से केवल जन्म दिए हैं मरने के लिए, मर जाएंगे चले जाएंगे, अपना हित करना चाहिए। व्यक्ति अपने से अपना गुरु है वास्तव में, आत्मा जितना अपना हित करने में समर्थ है उतना बाहरी आदमी हित नहीं कर सकता है, लेकिन करना चाहे तो, नहीं करना चाहे आत्मघाती हो जाए तो क्या करना। इसलिए जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता है उसको आत्महा कहा गया है, अपने से अपना हनन करना। तो कोई व्यक्ति अपनी हत्या करना चाहे, बीज खाना चाहे या बिजली का करंट छूना चाहे या कुआं में कूदना चाहे मरना चाहे, तो उसको कोई दूसरा व्यक्ति कब तक बचा सकता है, कहां कहां लगा रहेगा। तो जैसे उसके अहित से हम उसको बचा नहीं सकते हैं तो उसी तरह से हम हित भी नहीं कर सकते हैं। और वह यदि जीना चाहे बचना चाहे स्वस्थ रहना चाहे भगवान की भक्ति करना चाहे तो दूसरे लोग बहुत बाधित नहीं कर सकते हैं उसको नहीं करने के लिए, वो कर सकता है। इसलिए भगवान के इस वाक्य से अपने जीवन में यह निर्णय करना चाहिए कि हमें अपना हित करके ही रहना है, हमें अपना जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करना है। यदि आज आप निर्णय करते हैं कि हमें जप करना है तो आप अपना हित कर रहे हैं, और यदि निर्णय कर लिया जीव कि हमें जप करना है तो दूसरा कौन रोकेगा। इसलिए संस्थाओं में आजकल की संस्थाओं में देखा गया है कि जो भजन करना चाहता है उसी को वह संस्था स्वीकार करती है कहीं तो जहां तहां से जबरदस्ती पकड़ करके नहीं भक्त बनाया जाता है। जो बनना चाहता है तो उसको कहा ठीक है आप कंठी लीजिए माला लीजिए और जप कीजिए। तो इस तरह से देखा जाए तो वास्तव में आत्मा ही अपना हितैषी है गुरु है आत्मनो गुरु आत्मा ही आत्मा का गुरु आत्मा ही है। ये वह लगा करके भगवान अन्य के हितकारी को का निषेध कर रहे हैं अथवा उसे कम कर रहे हैं। और भी हितकारी है माता पिता भी हित करने वाले हैं गुरु भी हित करने वाला है लेकिन उस व्यक्ति का हित वह व्यक्ति जितना कर सकता है उतना दूसरे लोग नहीं कर सकते। इस बात को समझना चाहिए। यदि मैं ऐसी बात कहें तो कुछ लोग कहेंगे कि आप गुरु के महत्व को कम कर रहे हैं। यह बात नहीं है भगवान का प्रवचन गुरु अपनी जगह पर है। ड्राइवर गाड़ी हाँक रहा है चला रहा है लेकिन कोई दरवाजा से कूद करके मरना चाहे तो ड्राइवर क्या करेगा। वह यात्री स्वयं भी अपना हित करना चाहता है दरवाजे पर नहीं खड़ा होगा बंद कर देगा वो सीट पर रखता है उस ड्राइवर क्या क्या देखता चलेगा। तो चला रहा है समवेत रूप से ट्रेन चल रही है वास्तव में ले जा रहा है वो लेकिन किसी भी स्थिति में मनुष्य का हित वह मनुष्य ही करता है आत्मा ही अपना गुरु। गुरु का होता है हितकारी यही तो प्रतिष्ठा। तो इस तरह से प्रत्येक मनुष्य को विचार करना चाहिए विशेषकर भक्तों को कि अपना हित अपने आप करना है। मुझे यह बात याद आ गई कि मैं ऐसा कहूं इस कथा को क्योंकि सीतानाथ कह रहे थे कि जो लोग मंगलारती में नहीं आए हैं उनको खड़ा कर दिया जाए कहने के बाद भी कुछ लोग खड़े नहीं और वे सोचते थे कि पता ही न लगे कि कौन आए थे कौन नहीं आए थे। लेकिन इस बात को सुन करके यदि मान लीजिए भोर में उठने का स्वभाव नहीं बनाए नहीं चालू किए तो अब उसका हित का ठेका कौन लेगा। जो करने के बाद भी तो नहीं हो रहा है ना सीता प्रसाद रुकते हैं वो भी नहीं रुक रहा है उससे भी कुछ हित होता तो वो भी नहीं हो रहा है। इसलिए अपना भरोसा कर कराया अपन काम सुनो किसा अपने से अपना उद्धार कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान चाहते हैं कि भगवान पर भार न दिया जाए गुरु लोगों पर भी आवश्यकता से अधिक भार न दिया जाए सब अपना अपना करें उद्धार अपना अपना करें। अब एक व्यक्ति घंटी पीट पीट करके और कंबल हटा हटा करके बोले घोर में दुर्वचन या कठोर वचन बोले कि उठो एक बार पानी डाल देंगे ये करेंगे भोजन बंद कर देंगे फिर भी लोग नहीं उठते अब क्या किया जाएगा। तो कम से कम आपका हित नहीं लेकिन बेइज्जती तो करने में सीतानाथ समर्थ है इसलिए उठना चाहिए। सवेरे उठ जाएंगे तो भक्तों के साथ जप भी पूरा हो जाएगा। कहीं भी मनुष्य जाता है सोता है खाता है पीता है तो अपने हित अहित पर जरूर विचार करता रहता है। देखते ही कोई आदमी खा रहा है बच्चा ही खाता है तो उसमें खर या माछी तय करता है ये खर इसका अर्थ है कि वो अपना हित करना चाहता है वो नहीं खाना चाहता। तो जिस प्रकार से वो लौकिक हित अपना कर रहा है इसी प्रकार पारलौकिक हित भी उसी के हाथ में है। जब करना चाहे तो कर सकता है भागवत पढ़ना चाहे पढ़ सकता है भागवत सुनना चाहे सुन सकता है भगवान को मंदिर में आकर प्रणाम करना है कर सकता है। जब नहीं करेगा अपने से अपना उद्धार तो दूसरा कोई क्या करेगा उसके लिए। तो भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी की याद दिला रहे हैं, अपना धर्म पहचानो, अपना कर्तव्य पहचानो। और नहीं सब लोग छोड़ दें, भगवान जब चाहेंगे तो हम भजन करेंगे, लगता है भगवान ही नहीं चाह रहे हैं, ये तो उत्कंठित है, खड़ा है रात भर भजन करने के लिए, भगवान माला नहीं दे रहे। खा पी करके सोते हैं, घूमते हैं, कहते हैं भगवान जब चाहिए तो हम हो। कई बार हम लोग पूछते हैं तब कब माला लेते नहीं, कब माला लेते लोग, अब जब भगवान चाहे तबे न, भगवान चाहे वाले पत्र लिखने वाले खाई खा कर माला चपे खाते, जब चिट्ठी आई बोलो वृंदावन से तब माला चाह ली। भगवान जब चाहिए तब, भगवान तो उसी दिन चाह गए जिस दिन मनुष्य शरीर दिए, मनुष्य शरीर देना है प्रमाण है कि भगवान चाहते हैं। और भागवत में प्रवचन कर रहे हैं, गीता में प्रवचन किए हैं भगवान मेरा भजन कर। कई काम हम लोग अपने से अपना करते हैं, जैसे मान लीजिए स्नान, अपने से अपना मुंह धोते हैं ना, मुंह धोते हैं, आंख धोते हैं, साफ करते हैं शरीर को, गुरु जी आते रोज करते हैं। स्नान करके हम शुद्ध होते हैं, इसमें कौन कारण है, भाई स्नान कराता है कि स्त्री स्नान कराती है, बेटा, बेटा तो सोया रहता है, जगता भी नहीं, कोई नहीं हमको शुद्ध करता है, हमारा हाथ हमारी सफाई करते हैं, हम अपने से अपने को साफ करते हैं, तिलक करते हैं, खाते हैं। ज्यादातर तो यही दिखाया जाता है कि जीव अपने से अपना हित कर रहा है, कुछ लोग और लोग सहायता कर देते हैं, जैसे स्त्रियां भोजन बनाकर प्रस्तुत कर देती है, लेकिन खाना तो पड़ता है ना, चलाना पड़ता है, खाना पड़ता है, शरीर धोना पड़ता है और सोना पड़ता है, रास्ता चल रहा है तो बचकर चलना पड़ता है, कहीं गड्ढा में पैर न पड़ जाए। ऐसा तो नहीं है कि गुरु जी अब एक एक पैर रखवाते हैं, हाँ ठीक है आगे बढ़ाओ पैर, देख के संभाल के। जैसे यहाँ बिहार राज्य में बसें जो चलती है तो यहाँ पर खुद को खलासी रहते हैं और ड्राइवर कहते रहते हैं रोकने के लिए चला, और जगह अपने नहीं है, कल इधर है। तो हमको ये बात याद रहती है, कुदले अपने हाथी के एक एक पैर की रक्षा करने के लिए घोड़े पर चढ़े हुए थी, या रक्त की रक्षा करने के लिए लोग रहते। तो इसी तरह यहाँ के स्वास्थ्य को चलाने में दो दो खलासी भी चला रहे हैं, और बिना मतलब पकड़ों में इतना डिस्टर्ब होता है, कोई बगल में गाड़ी पड़ रही है तो चलो पढ़ा रहे, देख ही रहा है क्या डिस्टर्ब करो, चलो पढ़ा रहे। यह कह दो कि लोग चढ़ गए, एक बार भीषण दे दो कि चलो चाहे रुको, तो बढ़ाओ बढ़ाओ, और बगल में कोई गाड़ी आ गई तो फिर भीषे लिए वो, तो फालतू चीज रास्ते। तो इस तरह से अब एक आदमी को आगे बढ़ने में, भजन कराने में, अब तीन तीन आदमी लड़ गए, उठो उठो मंगलारती का समय हो गया, ये हो गया वो हो गया, उठो उठो भागवत सुनने का समय हो गया, महाराज जी बैठ गए, री बात। अब वो अपने आप बैठ भी नहीं सकता। प्राय मैं देखता हूँ लोग जब सुनते हैं माइक पर आवाज तब आते हैं, इतनी उत्कंठा भरी हुई। इस तरह से अपना समीक्षण करके देखना चाहिए कि हमारा कितना उद्धार हुआ है, सोने से, खाने से और अन्य इच्छाओं से कितना हम अपने को ऊपर उठाए, कृष्ण के प्रति कितना आकर्षण हुआ है। और अपने से अपना करना है, और दूसरा कोई व्यक्ति कहता तो उसकी बातों में दोष भी निकाला जा सकता था, स्वयं भगवान बोल रहे हैं, आत्मनु गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः, पुरुषस्य मतलब मनुष्यस्य, मनुष्य विशेष करके अपने से अपना गुरु है। कोई भी दोस्त आ रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति एक दोस्त से ग्रस्त, जैसे चोरी, चोरी एक दोस्त है, तो चोरी करेगा तो गुरु जी तो जान भी नहीं पाएंगे, वो चोरी का सुधार कैसे करेंगे। लेकिन जो करता है चोरी वो तो जान रहा है कि मैं चोरी किया, तो इस अशुभ आशय से वो अपने से अपना उद्धार नहीं करेगा तो दूसरे को क्या करेगा। सबको मालूम है ना किसका जॉब पूरा हो रहा है नहीं पूरा हो रहा है। गुरु पूछे या कोई दूसरा पूछे कि जब हो गया तो कह सकता है कि हाँ, लेकिन उसको मालूम है कि पूरा नहीं हुआ, तो वही पूरा कर सकता है, वही अपना हित कर सकता है। सब तरह से अपना हित जीव कर रहा है तो भगवान की भक्ति भी उसे अपने आप करनी पड़ेगी। तो भगवान के ये जो संदेश है वो तो मनुष्य की, प्रत्येक मनुष्य की व्यक्तिगत जिम्मेवारी की वो संकेत हो रहा है इस वक्तव्य द्वारा, भगवान के वक्तव्य द्वारा। तो अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। हम लोग तो भागवत कहते हैं, उपदेश करते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारी जिम्मेवारी है प्रचार की, पर भजन करने की जो वास्तविक जिम्मेवारी है वो प्रत्येक व्यक्ति पर है। तो अपने कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए, उससे नहीं चूकना चाहिए। नहीं तो आदमी किसी गति का नहीं हो सकता है। जो अपने से अपना हित नहीं करेगा उसके लिए क्या दूसरा कोई हित कर सकता है। इस तरह से अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान वाच प्रायेण मनुजालोके लोकतत्व विचक्षणः समुद्धरन्ति आत्मानम् आत्मनैवाशुभाशय आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् श्रेयोषावनुबिन्दते पुरुषत्रे च माम् धीरः साङ्ख्ययोगविशारदः आविष्टराम् प्रपश्यन्ति सर्वशक्त्युपबृंहिताम् एकाद्वित्रिचतुष्पादो बहुपादस्तथा पदः बहव्यः सन्ति पुरः सृष्टः तासमे पौरुषी प्रिया अत्र माम् मार्यं तद्धा युक्ता हेतुभिरीश्वरम् गृह्यमालैर्गुणैर्लिङ्गैः अग्राह्यमनुमानतः अत्रादाहरन्ति माम् इतिहासं पुरातनम् अवधूतस्य संवादम् यदो रमित तेजसः अवधूतं द्विजं कञ्चित् अवधूतं द्विजं कञ्चित् चरन्तामकुतो भयम् कविं निरीक्ष्य तरुणाम् यदुः पप्रच्छ धर्मणि जदुर्वाचा कुतो बुद्धिर्यं ब्राह्मण अकर्तुः विशारदा यामाशाद्य भवान् लोके लोकम् विद्वांश्चरति बालवात् प्रायो धर्मार्थ कामेषु विवित्सायां च मानवः हेतु नैव समीहन्ते आयुषो यशसः श्रियः त्वं तु कल्पः कविर्दक्षः सुभगो मृतभाषणः न कर्ता नेहसे किञ्चित् जडोन्मत्पिशाचव जनेषु दह्यमानेषु कामलोभदवाग्निना न तप्यसेऽग्निना मुक्तो गङ्गां ध्वस्थैव द्विपः त्वं हि नः पृच्छतां ब्रह्मन् आत्मन्यानन्दकारम् ब्रूहि स्पर्शविहीनस्य भक्त भवतः केवलात्मनः श्रीभगवानुवाच यदुनैवं महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा पृष्टः सभाजितः प्राह स्वप्रश्रयावनतं द्विजः ब्राह्मण उवाच सन्ति मे गुरवो राजन् बहवो बुद्ध्युपाश्रितः जतो बुद्धिमुपादाय मुक्तोटा निहतान् शृणु पृथिवी वायुराकाशम् आपोऽग्निश्चन्द्रमा रविः कपोतोजकरः सिन्धुः पतङ्गो मधुकृद्गजः मधुहा हरिरो मीनः पिङ्गला कुररोर्भकः कुमारी शरकृत्सर्पः पूर्णनाभिः सुपेशकृत् एते मे गुरवो राजन् चतुर्विंशतिराश्रितः शिक्षावृत्तिभिरेतेषाम् अन्वशिक्षमिहात्मनः यतो जदनु शिक्षामि यथा वा नाहुषात्मज तत्तथा पुरुष व्याघ्र निबोध कथयामि ते श्रीभगवानुवाच श्रीभगवान् ने कहा प्रायेण कुछ लोग मनुजः मनुष्य का लोके इस जगत में लोक तत्व विचक्षण लोगों की यथार्थ स्थिति पर विचार करने में प्रवी है लोग समुद्धरण की सम्यक उद्धार कर लेते हैं ही निसंदेह आत्मानं आत्मना अपने से एवा ही अशुभाशया संसारिक वासनाओं से। तद एवं असंभावना विपरीत भावना ध्यान उपदिष्टम तत्व अनवगाहमान प्रति तन्निवृत्तये गुरुपदेशम विना अपि स्व अन्वय व्यतिरेका ध्यान एव तत्व प्रतिपत्तिर्भवति इति दर्शितुम् आह प्रायेण। भगवान श्री कृष्ण संक्षेप में उद्धव जी से उद्धव जी के प्रति बताए तत्व ज्ञान असंभावना विपरीत भावना दो तरह से असंभावना विपरीत भावना ध्यान अनवकाह मानन संवृत्त है गुरु पत्र। भावना का अर्थ होता है चित्त वृत्ति, चित्त का वर्तन का। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि साधकों के हृदय में दो प्रकार की भावना उठती है प्रारंभ काल में, एक है असंभावना और दूसरी है विपरीत भावना। असंभावना का अर्थ है नास्ति ब्रह्म इति एवं रूपा चित्त वृत्ति, चित्त वृत्ति ब्रह्म नहीं है, जड़ है, पदार्थों के अतिरिक्त कोई आत्मा या परमात्मा नहीं है, इस प्रकार की चित्त वृत्ति को असंभावना कहते हैं। और विपरीत भावना का अर्थ ब्रह्म है तथा शास्त्र उत्कृष्टम तथा न किंतु अन्यथा एवं इति एवं रूपा चित्त वृत्ति। ब्रह्म है मतलब चित्त पदार्थ, जड़ पदार्थ से परे आत्मा या परमात्मा जैसे शास्त्र में कहा गया है वैसा नहीं है, कुछ और ही है, तो इसको विपरीत भावना कहते हैं। साधना का अर्थ ही है और चित्त पदार्थ का निरसन करके चित्त पदार्थ की खोज करना, तो दो प्रकार के चित्त पदार्थ हैं, एक भगवान जिन्हें परमात्मा कहते हैं और दूसरा है जीव जिसे आत्मा कहते हैं। इन दो के कारण कोई व्यक्ति आत्मा को ठीक से नहीं समझ पाता है। वास्तव में उद्धव जी की यह स्थिति नहीं है, परंतु फिर भी वे इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जिससे भगवान उनके प्रति उपदेश कर सकें। तो यहां पर भगवान यह बता रहे हैं कि गुरु के उपदेश के बिना भी अपने अन्वय और व्यतिवेक के द्वारा तत्व प्रतिपत्ति, तत्व मतलब तत्व ज्ञान, प्रतिपत्ति मतलब प्राप्ति हो सकती है, इसको दिखा रहे हैं। अन्वय व्यतिरेक का अर्थ है अपने हित के कार्य में जो प्रवृत्ति है उसको अन्वय कहते हैं और अहित से जो निवृत्ति है उसको व्यतिरेक कहते हैं। सर तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि स्व अन्वय व्यतिरेक का ध्यान एवं गुरुपदेशम बिना भी तत्व प्रतिपत्ति भवती है। अन्वय व्यतिरेक था अपने हित और अहित, हित की बात में लगना, हित के कार्य में लगने द्वारा और अहित के कार्य से मुक्त होने के द्वारा व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है। तो ऐसे कुछ लोग हुए हैं इस जगत में लोक के जो अपने से अपना उद्धार किए,